हरे कृष्ण। तो आज इस मंगलवार के दिन हम श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। कुछ बाहर के कारण होते हैं बाह्य, और कुछ अंतर कारण होते हैं। कुछ कारण यहाँ पर, ये ग्रंथ जो है इसका नाम है चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य भागवत। व्यास देव जी के अवतार वृंदावन दास ठाकुर, इन्होंने इसको लिया है, इसको लिखा है। तो इस ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भगवद गीता के आधार पर बताते हैं, जब तक धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, और वो अवतार लेकर संत पुरुष होते हैं, उनका रक्षण करते हैं और जो दुष्ट हैं उनका नाश करते हैं, और साथ साथ युग धर्म को स्थापन करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को छन्न अवतार माना गया है। छन्न अवतार का मतलब है छुपा हुआ अवतार। अभी भी आज अगर आप इतिहास की किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा है चैतन्य महाप्रभु के एक बंगाल के संत थे, ऐसा उनका उल्लेख आता है। एक बंगाल के मशहूर संत थे जिन्होंने भगवान के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। इसका मतलब आज भी बहुत लोग उनको जानते नहीं कि वो भगवान स्वयं अवतार लिए थे। इसका कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लेना चाहा तो उन्होंने भक्त के रूप में अवतार लेना चाहा, और भक्त के रूप में अवतार लेते हैं और अगर भगवान करके उनको लोग पुकारते हैं तो उनका उद्देश्य सफल नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अपने अवतार को छुपाए हुए रखा, इसलिए उन्हें छन्न अवतार कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में कई जगह पर उनके अवतार का उल्लेख आया है, जैसे कि कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तनाय प्रायर यजंती ही सुमेधसा। श्रीमद् भागवत में उल्लेख आया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन का सहारा लेते हैं और उस व्यक्ति को भजन करते हैं जो सुनहरे रंग के हैं और जिन्होंने हरिनाम का संकीर्तन का प्रचार किया है। उनके साथ साथ में उनके भाई नित्यानंद प्रभु यानी कि बलराम जी के अवतार, उनके बाकी अवतार गदाधर पंडित और उनके साथी पार्षद स्वरूप दामोदर जैसे, माफ कीजिएगा मेरा आवाज़ ज़रा ठीक नहीं है। तो इस तरह से कई बाहरी और अंतरंग कारण हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भक्त अवतार में आने का एक विशेष कारण ये था कि वो जब भी देखते थे कि जब भी राधा रानी उनकी सेवा करती है तभी उनके मन में एक ही विचार आता है कि राधा रानी जब मेरी सेवा करती है तो राधा रानी को मुझसे अधिक आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद जो मुझे प्राप्त नहीं होता है वो उसको प्राप्त होता है मेरी सेवा करने में, तो वो क्या आनंद है, ये उनके मन में प्रश्न था। उसको समझने के लिए उन्होंने भक्त का अवतार लिया, और जब भक्त का अवतार लिया तो राधा रानी का भाव उन्होंने स्वीकार किया। राधा रानी का भाव लेकर श्री कृष्ण भगवान आए। उनके मन में और भी एक प्रश्न था कि मुझ में ऐसी कोई क्या बात है जिसको देखकर राधा रानी मुझकी मेरी ओर आकर्षित होती है, जो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझ में वो चीज़ देखते हैं कि राधा रानी गोपियाँ सब मेरी ओर आकर्षित हो जाती है, तो वो समझने के लिए मुझे उनका भाव धारण करना पड़ेगा। जब उनका भाव धारण करेंगे तो उस भाव के आधार पर मुझ में जो वस्तु है वो मैं देख पाऊंगा, इसलिए भी उन्होंने भक्त का अवतार लिया। और जब भी चैतन्य महाप्रभु को लोग भगवान करके पुकारते थे तो वो कान में हाथ रख के विष्णु 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 पुकारते थे, कैसा मत कहिए ये अपराध है मुझे भगवान कहना। जीव को, साधारण जीव को भगवान पुकारना ही अपराध माना गया है, तो इसलिए वो स्वयं को साधारण जीव करके रूप में आए थे, इसलिए पूरे लीला में उन्होंने सब जगह पर यही इनकार किया कि मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन कुछ कुछ जगह पर उन्होंने प्रकाशित किया कि वो स्वयं भगवान है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे अवस्था थी चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले। इसका वर्णन यहाँ पर आया है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना अवतार लेने का समय नियत किया तो उन्होंने सारे पार्षदों को पहले भेज दिया। जैसे आप जानते हैं, जब राम भगवान ने अवतार लेने का समय निश्चित किया तो सभी देवताओं को आदेश दे के जाओ, सब लोग वानरों की वंश में जन्म ले लो। तो सभी देवता अपने अपने अंश के रूप में, सब वानर के रूप में प्रकाशित हुए। तो श्री कृष्ण भगवान के जन्म का समय आया तो भगवान के जितने पार्षद थे, नंद महाराज, यशोदा मैया, वृषभानु महाराज, जितने भी सखा गोपियाँ सब थी, वो सब भगवान के पहले आकर यदुवंश में और वृष्णि वंश में और गोकुल में आके सब अवतार ली। वो क्या करते हैं, भगवान के अवतार के लिए भूमिका बनाते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं जिसमें भगवान का अवतार हो सके। तो इसमें लिखा है कौन कौन से भगवान के अवतार पहले आए। अनंत शेष बलराम जी के रूप में आए। बलराम जी जो अनंत शेष हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, वो भगवान के पहले आए। शिव जी यानी कि अद्वैत आचार्य, शिव जी और अद्वैत आचार्य ये एक समान है। महाविष्णु और शिव जी भगवान एकत्र होकर अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए, ये चैतन्य महाप्रभु के पहले आए थे। ब्रह्मा जी आए, किस रूप में आए, हरिदास ठाकुर के रूप में श्री ब्रह्मा जी ने अवतार लिया। इस तरह से कुछ लोगों ने दमद्वीप धाम में अवतार लिया, कुछ लोगों ने चाटीग्राम में अवतार लिया, कुछ लोगों ने राधा देश में अवतार लिया, तो कुछ लोगों ने ओरिसा में, कुछ लोगों ने श्रीहट्ट में अवतार लिया। तो इस तरह से बहुत सारे वैष्णव अलग जगह पर आए, जैसे कि श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, मुरारी गुप्ता जो हनुमान जी के अवतार थे, श्रीवास पंडित जो नारद मुनि के अवतार थे, ये सब लोगों ने श्रीहट्ट नाम के जगह पर अवतार लिया, ये ओरिसा में आता है। और जो वृषभानु महाराज थे राधा रानी के पिताजी, वो पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए। फिर चैतन्य वल्लभ जो प्रहलाद जी के अवतार थे, वो वासुदेव दत्त के रूप में आए। इन सब लोगों ने कहाँ जन्म लिया, चाटीग्राम में जन्म लिया और बुढ़ाना नाम के गांव में हरिदास ठाकुर ने जन्म लिया। मैंने आपको सबसे तीन चार भी मंगलवार के पहले कहानी बताई थी, कैसे ब्रह्मा जी ने गायों के बछड़ों को चुराया, फिर पश्चाताप किया, फिर तपस्या किया, फिर तपस्या के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया द्वापर युग में और उनको आशीर्वाद दिया कि आप मेरे साथ में अवतार लोगे, और यवन कुल में जन्म लेकर भी आप नामाचार्य के रूप में प्रकाशित हो जाएंगे। तो वही हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी के अवतार थे, वो बुढ़ाना नाम के गांव में, जहाँ वहाँ पर एक गांव है फुलिया ग्राम, वहाँ पर उन्हें अवतार लिया। एक विशेष जगह थी उसका नाम था राधा देश, जहाँ पर पांडवों ने भी वनवास किया था, वनवास के समय वहाँ पर गए थे। उस गांव में नित्यानंद प्रभु अवतार लेते, हड़ाई पंडित और पद्मावती उनके माता पिता का नाम है, और वो वहाँ पर जन्म लेते हैं। उसे कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु हमेशा बड़े आनंद में रहते थे और उनकी वो कृपा के सागर है, और उनकी वजह से राधा देश में पूरा समृद्धि और आनंद छा गया, और उस दिन से समृद्धि, पवित्रता, आनंद उस गांव में फैल गया। परमानंदपुरी जो भगवान के विशेष अवतार थे, वो जगन्नाथपुरी में त्रिहुत नाम के गांव में उन्होंने अवतार लिया। इस तरह से जितनी भी गंगा की नदी में, नदी के किनारे में जगह थी, वहाँ पर सब लोग अवतार लिए, और कुछ कुछ भक्तों ने जहाँ गंगा नहीं बहती है वहाँ अवतार लिए। अब एक विशेष समझने की बात है कि जहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती है उस जगह को अपवित्र माना गया है, लेकिन फिर भी इन भक्तों ने अवतार क्यों लिया, ऐसा प्रश्न यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर पूछते हैं, उसका उत्तर भी देते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर सबसे पतित जगह होती है वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के जो मित्र और पार्षद हैं वो जन्म लेते हैं, ताकि उनके जन्म होने से उस पूरे गांव का उद्धार हो जाता है। इस वजह से उन्होंने, कई कई भक्तों ने, जहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती है उसको गौड़ देश कहते हैं, गौड़ देश। उस गौड़ देश को पांडवों ने भी वनवास के लिए त्याग दिया था, वहाँ पर वनवास नहीं किया था उन्होंने, यहाँ पर गंगा नदी भी थे उसके किनारे किनारे उन्होंने अपना वनवास पूरा किया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो है उन्होंने वहाँ पर भी अवतार लिया, ताकि उस गांव का उन्होंने अपने भक्ति के प्रभाव से सबका उद्धार कर लिया। और जहाँ जहाँ जन्म लिए वहाँ का उद्धार किया, और वहाँ से फिर नवद्वीप में इकट्ठा हुए चैतन्य महाप्रभु का स्वागत करने के लिए। तो इस तरह से वैष्णव लोग सब जगह पे अवतार हुए और चैतन्य नारायण भगवान अपने भक्तों के साथ में तैयार हुए भौतिक दुनिया में अवतार लेने के लिए। उस चैतन्य भगवान को दुनिया में अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक दुनिया के लोग पतित हैं, भगवान से वंचित है, उन पर कृपा के रूप में, दया के रूप में, करुणा के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो उस समय क्या अवस्था थी नवद्वीप में? नवद्वीप में लक्ष्मी और देवी सरस्वती की बड़ी कृपा थी। ऐसे कहते हैं कितने हजारों संस्कृत के शिक्षक वहाँ पर थे, अध्यापक, और कितने लाखों विद्यार्थी वहाँ पर थे, उसको कोई गिनती नहीं थी। लेकिन सब लोगों को अपनी विद्या के वजह से और लक्ष्मी के वास के वजह से बहुत धन प्राप्ति हुई थी, बहुत मान सम्मान प्राप्ति हुई थी। दूर दूर से भारतवर्ष के लोग नवद्वीप में संस्कृत और ज्ञान पढ़ने के लिए आते थे। इसलिए सारे विद्वान जो है बहुत अहंकार में चूर थे, बहुत गौरव था उनको, और हमेशा वो शास्त्र में वाद विवाद करने में मग्न रहा करते थे। और नवद्वीप में आने से ही लोगों को संस्कृत की रुचि उत्पन्न हुआ करती थी, ऐसे उस जगह की खाती थी। वहाँ पर एक नगरी है, उसका नाम है विद्यानगर। उस विद्यानगर में एक बड़े पंडित हुआ करते थे, उसका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। वो बृहस्पति के अवतार थे, वो चैतन्य महाप्रभु के लीला में सहायता करने के लिए वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। और वो इतने बुद्धिमान थे कि जो भी कुछ बोलते थे वो सब तुरंत ग्रहण करते थे। तो एक बड़े पंडित थे दूसरे गांव में, जो एक शास्त्र पढ़ाते थे और वो किसी को लिख के देते नहीं थे, उसको केवल उनके पास आके पढ़ेंगे तो सिखाते थे उसको। तो ये इतने विद्वान थे, उनके पास पढ़ने गए और जैसे उन्होंने वो शास्त्र पढ़ा उनके सामने, वो पूरा उन्होंने याद कर लिया और फिर जाके अपने गाँव में गए विद्यानगर में, अपने हाथ से उसको उतारा। इतने बड़े विद्वान थे वो। चैतन्य महाप्रभु उनके गांव में गए हुए हैं, उन्होंने अपने पेन जो है वो जमीन पे गाड़ा और वहाँ पर एक वृक्ष उत्पन्न आ गया। ऐसा बहुत सुंदर जगह है वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या और लक्ष्मी की संपन्नता होने की वजह से सभी लोग पंडित जो है वो गर्विष्ठ बन गए थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कलयुग आगे बढ़ने लगा तो भक्ति में श्री कृष्ण भगवान की भक्ति और राम भगवान की भक्ति नष्ट होते गई और केवल ज्ञान बचा, ज्ञान की चर्चा वाद विवाद बचा। और जो भी लोग सीखने को आने लगे वो भी धीरे धीरे इस ज्ञान का उपयोग केवल धन प्राप्ति करने के लिए, कर्म कांडे करने के लिए करने लगे। क्योंकि हर ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, वेदैश्च सर्वर अहमेव वेद्यो। सारे वेदों को पठन करके करना क्या है, हमको क्या करना है बताइए। यस, सब वेदों को ज्ञान प्राप्त करके क्या करना है, भगवान को समझना है, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करनी है। केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त नहीं करनी है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन ऐसे धीरे धीरे होने लगा कलयुग के प्रभाव से, तो वेदों का सार जो है भगवान की भक्ति वो बाजू में हटा के केवल ज्ञान और ज्ञान और चर्चा, उसमें सब लोग खोने लगे अपने आप को। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी जो भक्ति है वो देवताओं के प्रति, खास करके काली चंडी के प्रति प्रकट होने लगी। कुछ लोग सांपों के देवता मनसा देवी को पूजने लगे और कुछ लोग भूतों की प्रेतों की पूजा करने लगे, शराब और मांस के साथ अर्पण करते हुए भूत प्रेत की पूजा करने लगे। ये सब लोग ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, सब लोग संस्कृत के विद्वान हैं। और उस समय उस गाँव में बड़े मशहूर लोग रहा करते थे, उनका नाम था, टाइटल था उनका भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती और मिश्रा। ये बड़े उच्च उच्च कुल के ब्राह्मण थे वो, और शास्त्र में ज्ञान में बड़े पारंगत थे। वो लोग क्या करने लगे, अपने लड़कों की बेटियों की शादी में बहुत सारा धन लुटाने लगे। मतलब ऐसे समारोह में जैसे कि पूजा होती है, सगाई होती है, शादी होती है, ऐसे समारोह में अधिक अधिक खर्च करने लगे। वो आनंद लेने में मशगूल रहने लगे, इंद्रिय भोग करने में मशगूल होने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, भट्टाचार्य के कुल में जन्म हुए लोग, चक्रवर्ती जन्म में कुल हुए लोग, मिश्रा कुल में जन्म लिए हो जो है उनको भी वेदों का सार समझना मुश्किल होते गया। और वो सब खाली श्लोक बोला करते थे लेकिन उनका अर्थ उनको पता नहीं था। धीरे धीरे ऐसे उनका पतन होने लगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने सबको शास्त्र सिखाया, लेकिन वो स्वयं भौतिकतावादी बने, इंद्रिय भोग के आधार पर जीवन जीना लगे। फिर क्या हुआ, कृष्ण कीर्तन में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं बचा, युग धर्म के बारे में कोई रुचि नहीं बची। केवल अगर दूसरों की निंदा करने को मौका मिले तो लोग उत्सुक रहा करते थे, और किसी की स्तुति करने में उनको बहुत कष्ट होता था। इससे क्या हुआ, यमराज का जो फंदा था वो सबके गले में धीरे धीरे बहुत कस के बंधने लगा। भगवान हरि का नाम ब्राह्मण लोग सब अनुष्ठान करते थे, पूजा करते थे, संस्कार करते थे, शादी का, विवाह का, नामकरण, लेकिन किसी संस्कार में भगवान कृष्ण का नाम लेते नहीं थे, केवल मंत्र उच्चारण करते थे। और केवल कभी गंगा नदी में स्नान किया अमावस्या के दिन, कभी ग्रहण के दिन, तो गोविंद पुंडरीकाक्ष हरि का नाम लेते थे बस, केवल नियम रिचुअल के अनुसार, भक्तिभाव से नहीं। और ब्राह्मण भी गंगा नदी में स्नान करने में चुकते थे, मतलब धीरे धीरे कम करते करते कभी कभी मौका आया तो स्नान करते थे। आज का भी लक्षण यही है। मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था तो हरिद्वार का एक लड़का मुझे मिला, तो मैंने कहा बेटा आप गंगा जी में कितना दिन स्नान करते हो, बोलते साल में एक बार करते हैं। हाँ, गंगा जी के किनारे में रहते हैं लेकिन साल में एक बार स्नान करते हैं, और पवित्र नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर यात्रा करते हैं और वहाँ जाकर स्नान करते हैं। ये कलयुग का लक्षण है, वो तब से प्रकट हुआ था। भगवत गीता और भागवत का वर्णन करते हुए भी वो हरि के नाम की महिमा नहीं सुनाते थे। अभी भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत का ही नाम है उसके अंदर, श्रीमद् भागवत में हरि की कथा है, सब हरि पाठ ही है पूरा वो, लेकिन उसके ऊपर भाष्य करते हुए भी ये ब्राह्मण लोग वहां पर हरि का नाम का उच्चारण नहीं करते थे। तो इस तरह से जो गिने चुने भक्त थे वो बहुत दुखी होते थे। वह कहते थे इनका उद्धार कैसे होगा, इनको भगवान के नाम में रुचि नहीं है, कैसे उनका उद्धार होगा। अपने अपने घर में बैठकर वो भगवान के नाम का जप करते थे, लेकिन दुनिया के विषय में बहुत करुणा से उनको दुख हुआ करता था। फिर तो नवद्वीप में उस समय सभी भक्तों के प्रधान भक्त थे, एक वो थे अद्वैत आचार्य, जो मैंने बताया आपको शिव जी के और महाविष्णु के अवतार थे। वो बहुत ही प्रसिद्ध और गौरवशाली व्यक्ति थे। वो ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान, भक्ति का रहस्य और वैराग्य, इन तीनों विषय में निपुण थे। और जब कोई भी शास्त्र का कोई भी भाग वो चर्चा करते थे तो हमेशा उसके सार रूप में बताते थे कि इन सारे श्लोकों का, सारे मंत्रों का, सारे वेदों के उच्चारणों का उद्देश्य एक ही है, भगवान हरि के चरणों की सेवा। जो बाकी लोग कहीं करते थे, अद्वैत आचार्य बड़े कुशलता के साथ में लोगों को समझाते थे इन सब श्लोकों का और शास्त्रों का उद्देश्य केवल एक ही है, और वो तुलसी मंजरी और गंगा जल से भगवान की पूजा करते थे। उन्होंने देखा कि लोग इतने पतित हैं, भगवान में उनको रुचि नहीं है, मांसाहार कर रहे हैं और हमेशा शराब और मांस रख के देवियों की पूजा कर रहे हैं, भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। बड़ा दुख हुआ उनको, ब्राह्मणों की स्थिति को देखकर बड़ा दुख हुआ उनको। तो उन्होंने एक दिन शास्त्र में पढ़ा कि असहाय अवस्था में गंगा जल, चंदन और तुलसी लेकर जो शालिग्राम शिला की पूजा करेगा और भगवान को पुकारेगा तो उसकी हृदय की इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो जब उन्होंने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, प्रचार करने की, और देखा कि लोगों में बिल्कुल इच्छा नहीं है, किसी के भी अंदर भी अच्छे अच्छे जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनको भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तब वो असहाय हो गए। तब वो सब कुछ प्रचार कार्य छोड़ के गंगा जी किनारे बैठ गए, शालिग्राम की शिला को लेकर, और गंगा जल, चंदन और तुलसी लेकर उनकी सेवा करने लगे और भगवान को पुकारने लगे। ऐसे कहा है, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि जब वो विष्णु को पुकारते थे तो उनकी आवाज़ ब्रह्मांडों के आवरणों को पार करते हुए, विरजा नदी को पार करते हुए, वैकुंठों को पार करते हुए भगवान कृष्ण के कान तक पहुंचती थी। मतलब वॉल्यूम नहीं, दर्द जो अंदर की, जो आतुरता थी, पुकार थी उसकी, करुणामय पुकार, उस पुकार से भगवान का हृदय भी हिल गया। भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरे भगवान ने अवतार लिया तो ही इस दुनिया का उद्धार हो सकता है। अगर मैं भगवान कृष्ण को वैकुंठ से यहाँ बुलाने में समर्थ रहा तो तो इस विश्व का कल्याण हो सकता है। इस भावना से अद्वैत आचार्य ने भगवान को पुकारना शुरू किया। और चैतन्य महाप्रभु ने भी आगे जाकर कई बार कथ बताया कि क्योंकि अद्वैत आचार्य ने मुझे पुकारा इसलिए मैंने इस दुनिया में आया, उनकी पुकार को प्रतिसाद देने के लिए। फिर पुनः पुनः चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अद्वैत आचार्य के कारण ही मैंने विश्व में अवतार लिया है। श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु ने आनंद लिया। फिर चार भाइयों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना आरंभ की, 3 बार गंगा में स्नान करना आरंभ किया और भगवान को पूजन किया। इस तरह से चंद्रशेखर आचार्य, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मामा थे, जगदीश पंडित, गोपीनाथ आचार्य, श्रीमान पंडित, मुरारी गुप्ता, श्री गरुड़देव और गंगादास पंडित, इन सब लोगों ने वहाँ पर भजन पूजन शुरू किया। इस प्रकार से ये सभी जो भगवान के भक्त थे वो बड़े श्रेष्ठ भक्त थे, भगवान के समर्पित भगवान के भक्त थे। और जब उन्होंने देखा कि भगवान के बिना ये पूरा दुनिया सुखी हुई थी, मतलब ड्राई यानी कि शुष्क हुई थी, उनके हृदय में करुणा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ बैठकर भगवत चर्चा आरंभ की, भगवत भजन आरंभ किया। अद्वैत आचार्य के घर में बैठकर उन्होंने 1-2 घंटा जब वो बैठकर श्रीमद् भागवत सुनते थे, तब उनके हृदय की जो पीड़ा थी, अग्नि था, पीड़ा की अग्नि शांत हुआ करती थी। आज भी आप जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के गांव में, नवद्वीप धाम में, तो मेन रोड पर ही अद्वैत भवन है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले अद्वैत आचार्य सभी भक्तों को लेकर वहाँ बैठकर भागवत का पठन करते थे। और अद्वैत आचार्य को मिलने के बाद में भक्त लोगों के हृदय में शांति उत्पन्न हुआ करती थी। अद्वैता ने उपवास करना आरंभ किया और वैष्णव उनको देखकर दुख प्रकट करने लगे। इस तरह से जब साथ में सब लोग मिलकर भगवान को समझ नहीं पाए, उनको केवल पुत्र और पैसा एक उत्पन्न करने में इच्छा थी, और वैष्णवों को देखकर ब्राह्मण लोग हमेशा निंदा और मजाक किया करते थे। तो एक दिन जब श्रीवास पंडित ने अपने घर में बैठकर श्रीवास आंगन में जोर जोर से रात रात को भगवान को पुकारना आरंभ किया, तो लोग क्या बोलने लगे, अरे ये तो मूर्ख लोग हैं, ये मुसलमान लोगों को यहाँ पर खींच के लेके आएंगे, मुसलमान लोग इनका घर को तोड़ देंगे और हम इनके साथ में हमको भी यहाँ से भगा देंगे। तो इन लोगों को भगवान के नाम के जप करने से रोकना चाहिए क्योंकि हमारे मृत्यु का कारण बनेंगे। ये जोर से भगवान को पुकारेंगे, ये मुसलमान सैनिक यहाँ पर आएंगे, हमको मारेंगे, उनको मारेंगे, उनका घर भी तोड़ देंगे। इससे अच्छा ये होगा कि हम इनका घर तोड़कर इनके घर के साथ में इनको गंगा नदी में फेंक दें। ऐसे कौन बात कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग बात कर रहे हैं। हाँ, भगवान के नाम का पुकारने से सुनकर ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ऐसी है। तो श्रीनिवास आचार्य, गंगादास पंडित, शुक्लंबर ब्रह्मचारी, इन सब लोगों को अद्वैत आचार्य ने कहा कि मुझे ये सब देखकर बहुत क्रोध हो रहा है, मैं भगवान को पुकारूंगा और आप सबके सामने आंखों के सामने उनको प्रकट करने में मजबूर कर दूंगा। भगवान आएंगे यहाँ पर, सबका उद्धार करेंगे, आप सबको स्वीकार करेंगे अपने पार्षद के रूप में और सब लोगों को कृष्ण भक्ति पढ़ाएंगे, भक्त के रूप में आएंगे। अगर मैं उनको लाने में असफल रहा तो मैं स्वयं चतुर्भुज धारण करूंगा और अपने हाथ में चक्र लेकर इन सब लोगों का वध कर डालूंगा। अब अद्वैत आचार्य का मूड देखिए, कितना बढ़िया सुंदर मूड है उनका। मैं सब नास्तिक लोगों की गर्दन काट दूंगा और श्री कृष्ण भगवान मेरे मालिक है, स्वामी है, सबको सिद्ध करूंगा। पुनः पुनः अद्वैत आचार्य क्रोध से बोलने लगे और उनका मन एकाग्र करके वो कृष्ण भगवान का पूजन करने लगे। इस तरह से कभी क्रोध, कभी आंखों में आंसू लेकर अद्वैत आचार्य ने भगवान का पूजन किया। तो आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार नित्यानंद प्रभु ने राधा देश में, जो आज एक चक्र नाम से प्रसिद्ध है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो है वहाँ से 8 घंटा बस से जाना पड़ता है राधा देश को, जहाँ पर पांडवों ने बकासुर को मारा था। एक बकासुर को कृष्ण भगवान ने मारा था और एक बकासुर को भीम ने मारा था। वो गांव है एक चक्र गांव, उसी गांव में द्वापर युग में भीम ने बकासुर को मारा था। उस गांव में नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर पे शुक्ल त्रयोदशी माघ महीने में, अभी आएगा थोड़े दिन के बाद में, हाँ थोड़े दिन के बाद में माघ महीना शुरू होगा, अभी पौष महीना चालू है। तो माघ महीने के शुक्ल त्रयोदशी के दिन श्री नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया। इस प्रकार से भगवान बलराम जो दया के सागर हैं और भक्ति को देने वाले हैं, नित्यानंद के नाम से उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। सभी देवताओं ने उस समय पुष्प वृष्टि की और जय जय करके उनका गौरव किया। उसी दिन से राधा देश में समृद्धि और पवित्रता का निर्माण हुआ और समय समय पर उसकी वृद्धि होती गई। नित्यानंद प्रभु सब जगह एकचक्र धाम में घुमा करते थे और जीवों का उद्धार किया करते थे। एक मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा कि नित्यानंद प्रभु ने कैसे लोगों का उद्धार किया। नित्यानंद प्रभु की दृष्टि में केवल देखने में, नज़र में इतनी शक्ति है कि जहाँ जहाँ उनकी नज़र गिरती थी, जिस जिस व्यक्ति को वो देखते थे वो कृष्ण प्रेम में पागल हुआ करते थे। एक दिन कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़ के खेल रहे थे तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पर कृष्ण भक्ति में मदमस्त होकर आए और उन बच्चों को उन्होंने देखा। तो बच्चे को देखते ही सब बच्चे जो है कृष्ण भक्ति में पागल हो गए और 3.5 महीने तक उन्होंने लगातार कीर्तन किया। 3.5 months दिन रात उन बच्चों के साथ में उन्होंने कीर्तन किया। ना भोजन उन्होंने बच्चों ने किया, ना खाना, ना सोना, ना कुछ। 3.5 महीने तक नित्यानंद प्रभु ने उनको अनंत भक्ति का आनंद दिया। इनकी कृपा को समझना बहुत मुश्किल काम है। तो इस प्रकार से एक बार वो रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ भक्तगण बैठकर भजन किया भजन कर रहे थे। जैसे उन्होंने ऐसा देखा, उनको यहाँ से देखे ऐसे देखा, जैसे ही जिसके ऊपर नज़र पड़ी वो सब कृष्ण प्रेम में बेहोश हो गए। जैसे हम लोग पत्ता होता ना, पत्ता खेलने का, उसका हम घर बनाते हैं और एक पत्ते को गिराते हैं तो कैसे सब पत्ते गिर जाते हैं लाइन से, उस तरह से जैसे ही उनकी नज़र उन पर पड़ी सब लोग कृष्ण प्रेम में अति विभोर होकर बेहोश हो गए। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने जो अनंत शेष के अवतार हैं सब एक चक्रवासियों को भगवान की भक्ति में डुबा दिया। नवद्वीप में उस समय जगन्नाथ मिश्र नाम के बड़े श्रेष्ठ भक्त थे और ये नंद महाराज के अवतार थे। ऐसे कहा गया है कि इनके अंदर नंद महाराज, वसुदेव, कश्यप मुनि, दशरथ, कौशल्या जैसे सब सबके गुण थे उनके अंदर, जो भगवान के पिता के रूप में हर अवतार में जन्म लेते हैं। तो इस अवतार में जगन्नाथ मिश्रा नाम के रूप में उन्होंने अवतार लिया और वो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठ थे और महाराज वसुदेव, दशरथ और नंद महाराज जैसे, कश्यप मुनि, वासुदेव, नंद महाराज के जैसे उनके अंदर गुण थे। उनकी पत्नी का नाम सची देवी था, यशोदा देवी देवकी जैसी महान थी, साक्षात विष्णु भक्ति मूर्तिमान थी वो सची देवी। और उनको बड़े समय तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी तो वो गंगा जी को पार करते हुए जाती थी। उनका नाम है नदिया ग्राम था वो, कोलद्वीप उसके आगे जाकर, और वहाँ पर जाकर शिव जो है उनकी पूजा करती थी कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। उनको वृद्ध शिव कहते हैं। वृद्ध शिव जो है वो शंकर भगवान स्वयं हैं, उनकी ही कृपा से माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। तो सबसे पहले उनको 9 कन्या प्राप्त हुई और 9.5 कन्या जो है मृत्यु को प्राप्त हुई, सब कन्याओं का मृत्यु हो गया। बड़ी दुखी हुई सची माता और उनके पति जगन्नाथ मिश्रा। उसके बाद में उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जो बलराम जी के अंश अवतार थे, उनका नाम था विश्वरूप। और ये विश्वरूप जो थे उसका वर्णन ऐसा आता है कि वो बहुत ही दिखने में सुंदर थे, जो भी उनको देखते थे वो केवल उनको देखते ही रहा करते थे। इतने उनके सुंदर भुजाएं, उनका वक्षस्थल, उनके कंधे, उनके हाथ पांव बहुत सुंदर थे और वो जन्म से ही भक्ति विरक्त अवस्था में थे। हमेशा अद्वैत आचार्य के घर में जाकर भागवत सुना करते थे और घंटों भागवत सुना करते थे सुध बुध और भूख को भूल कर। तो माता जाकर उनको बुलाती थी, भोजन के समय पर आइए आप भोजन कीजिए, तभी बोले बाद में आऊँगा करके बहुत देर तक सुबह से लेकर शाम तक भागवत पठन किया करते थे। ऐसे विश्वरूप थे। तो यथावकाश अमावस्या का समय आया, फाल्गुन महीना आया और फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन पूर्णतः चंद्रग्रहण हुआ, पूर्ण चंद्रग्रहण हुआ। उस समय जितने भी लोग थे नवद्वीप में वह सब लोग नदी किनारे आए, जो सच्चे भक्त थे वो भी आए, जो भट्टाचार्य चक्रवर्ती और मिश्रा थे जो अपने धर्म को भूल चुके थे वो भी वहाँ पर आए कर्मकांड के रूप में। हाँ, अपवित्रता के प्रभाव न होना चाहिए हमारे ऊपर, अपवित्र हम पर प्रभाव नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए नहीं, लेकिन चंद्र ग्रहण के द्वारा जो अपवित्रता उत्पन्न होती है उसका प्रभाव हम पर नहीं होना चाहिए। इस कारण से भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्रा सब वहाँ आए, यवन भी वहाँ पर आए, नास्तिक लोग पर भी आए और सब लोगों ने नदी में स्नान किया और नदी में स्नान करते हरि हरि का उद्घोष किया। जो नास्तिक लोग थे और जो यवन लोग थे वो उनको देखकर चिढ़ाने लगे और चिढ़ाने के रूप में वो भी हरि हरि बोलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लेने के पहले ही बता दिया कि मेरा अवतार का उद्देश्य क्या है, सभी विश्व को हरिनाम से भर देने के लिए, हरिनाम की गूंज से सब विश्व को भर देने के लिए उन्होंने अवतार लिया। तो उस समय नीम के पेड़ के नीचे योगपीठ स्थान में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उनके पिताजी ने उनका नाम निमाय रखा। अभी ये जो योगपीठ है इसका बड़ा सुंदर कथा है, जहाँ जहाँ भगवान अवतार लेते हैं उस जगह को योगपीठ कहते हैं। जैसे वृंदावन में एक योगपीठ है जहाँ पर राधा गोविंद जी प्रकट हुए थे। हाँ, तो ये योगपीठ जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो है उसका दर्शन उसको प्रकट होने के पहले भक्तिविनोद ठाकुर ने भी किया था, प्रकाश नजर आया था उनको और उन्होंने देखा भी था कि सब लोग हाथ ऊपर करके सभी रंग के लोग सभी भाषाओं के लोग एकत्र होकर वहाँ नृत्य कर रहे हैं। तो वही जगह थी वो जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने नीम के पेड़ के नीचे अवतार लिया बालक के रूप में। तो जैसे उनका जन्म हुआ उस समय सारे देवता गण भेष बदल कर वहाँ पर उपस्थित रहे, ब्रह्मा शिव आदि देवता वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने रूप बदल कर वहाँ पर प्रार्थना अर्पण की भगवान को। अभी ब्रह्मा जी और सारे देवताओं ने मिलकर भगवान को प्रार्थना की, ऐसे कहा गया है कि इन प्रार्थनाओं को पढ़ने से हमारे मन में भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इनमें से कुछ प्रार्थनाएं हम पढ़ेंगे। बोले, भगवान चैतन्य महाप्रभु का गौरव हो, तो सबके पिता हैं, गौरव हो उनका जिन्होंने चैतन्य जो संकीर्तन आंदोलन को आरंभ करना है, जो वेद के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, भक्तों के रक्षक हैं, ब्राह्मणों के रक्षक हैं, उनकी जय हो। जो काल स्वयं काल है और अभक्तों के नाश करने वाले, उनका गौरव हो। जय हो उस भगवान का जो दिव्य है, त्रिगुणातीत है और चिरंतन है। जय हो उस भगवान का जो सभी नियंत्रकों के नियंत्रक हैं और सबकी इच्छा तत्क्षण पूर्ण करने वाले हैं। हे भगवान, आप अनंत ब्रह्मांडों में निवास करते हैं, वही आप आज सती देवी के गर्भ में प्रकट हुए हैं। हम आपकी इच्छाओं को कैसे समझें? आपकी इच्छाओं को समझना नामुमकिन है। ये जो सृष्टि का निर्माण है, उसका पालन पालन है, इसका नाश करना है, ये तीनों केवल आपका आपके कारण होता है और ये केवल आपके लिए खेल जैसा है। अगर आप चाहते हैं तो एक क्षण में आप सारे ब्रह्मांडों को नष्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं होते तो कंस को किसने मारा होता, रावण को किसने मारा होता? इसलिए आप दशरथ और वसुदेव के घर में जन्म लिए और राक्षसों का आपने उद्धार कर दिया। हे भगवान, आप जैसे कार्य करते हैं उसको कौन समझ सकता है? आपके कार्यों का रहस्य कौन जान सकता है? आपके हृदय में क्या बात है कि समझना किसके लिए मुमकिन नहीं है? अगर आप आज्ञा देते हैं तो अनंत ब्रह्मांड तत्क्षण निर्माण हो जाते हैं। आप जब इस दुनिया में अवतार लेते हैं तो सच्चा धर्म सिखाते हैं और हर व्यक्ति को भाग्यवान बना देते हैं। हे भगवान, सत्ययुग में आपने सफ़ेद रंग में जन्म लिया, तपस्या किया और तपस्या का पात मार्ग जो है वो सबको सिखाया। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, दंड हाथ में धारण करके आपने एक्सेप्टिंग द रोल ऑफ ब्रह्मचारी, होल्डिंग अ दंडा एंड कमंडलू इन हैंड, योर हेयर मैटेड, योर गारमेंट्स डियर स्किन, यू डिसेंडेड इन दिस वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश टू रिलीजन। हाथ में दंड और कमंडल धारण करके, अपने बालों के जटा बनाकर और हिरण के त्वचा को धारण करते हुए तपस्या सिखाने के लिए सत्ययुग में आपने जन्म लिया। त्रेता युग में आपने यज्ञ पुरुष के रूप में जन्म लिया, आपका रंग उस समय लाल था। और आपने सबको यज्ञ करना सिखाया, युग धर्म को सिखाया। द्वापर युग में आपने घने बादल की तरह रंग धारण करके अर्च विग्रह की पूजा सबको सिखाई, और अभी आप कलयुग में ब्राह्मण के रूप में पीले रंग यानी सुनहरे रंग के अवतार में जन्म लिया है, और आप सबको संकीर्तन का आंदोलन सिखाएंगे और वेदों का जो सार है हरिनाम उसका प्रचार करेंगे। जिस प्रकार से बधाइयाँ सब लोग गाने लगी, ऐसा बताया है कि जिस समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ उस समय हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य शांतिपुर में थे, और जैसे ही जन्म भगवान का हुआ इनको अचानक हृदय में बहुत अति आनंद का अनुभव हुआ, और वो घर में कूद कूद कर नाचने लगे, और नाचते नाचते हुए गंगा जी में गए और उन्होंने स्नान किया, और उनको प्रेरणा हुई हृदय में कि भगवान आ गए हैं। तुरंत अपनी पत्नी को लेकर अच्छी अच्छी भेंट वस्तु लेकर वहाँ से भागते भागते भागते, शांतिपुर और नवद्वीप जो है बहुत दूर है वैसे, वहाँ से भागते भागते वो नवद्वीप धाम गए, और सची माता को अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, उसमें चंदन, अगुरु, वस्त्र, खिलौने, अलंकार, खाने पीने की वस्तु, जनेऊ, अगुरु, सब सारे वस्तु उन्होंने वहाँ पर भेंट दिया। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो धनश्री राग में, पंचम राग में, हाँ पटमंजरी राग में भगवान की जन्म की बधाइयाँ गाई गई। श्रीवास ठाकुर की पत्नी वहाँ पर आई, उन्होंने भगवान के माता पिता को भेंट दी और बालक भगवान को भी भेंट दी। इसके बाद में एक समारोह होता है जन्म के दो दिन के बाद में, ज्योतिषी को बुलाया जाता है और स्नान करने के पश्चात माता पिता रिश्तेदार सब एकत्र आकर बैठते हैं और बच्चे का कुंडली बनाते हैं। ब्राह्मण आते हैं और बच्चे के पूरे जीवन का वर्णन करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी, माता थी सची माता, उनके पिताजी का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। तो नीलांबर चक्रवर्ती ये बड़े ज्योतिषी थे, तो वो आते हैं अपने गांव से अपने बेटी के पुत्र को देखने के लिए, और वही बैठ जाते हैं उसके भविष्य का वर्णन करने के लिए। तो वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इस ग्रंथ से कि जब दस दिशाओं में हरि के नाम का आनंद भर गया था उस समय ब्राह्मणों के शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्मित हास्य किया और इस पृथ्वी पर जन्म लिया। ऐसे सुंदर बालक के चेहरों को देखते हुए सची और जगन्नाथ मिश्रा का हृदय आनंद से भर गया। कौन सी रिवाज हमको करना चाहिए, कौन सी रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं है, गौरव कर रहे हैं सब लोग। इस तरह सभी रिश्तेदार लोग वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु घर में आए, जगन्नाथ मिश्रा के घर में सब वैष्णव लोग भर गए। सची के पिताजी जो महान ब्राह्मण थे नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने इस बालक के दिव्य कुंडली पर ध्यान दिया, पहले बनवाया और फिर ध्यान दिया। आश्चर्य से चकित होकर उसने बार बार उस बालक को देखा, और नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि ये बालक के शरीर पर एक महान अति महान राजा के चिन्ह हैं। फिर कहा कि इसके कुंडली को देखकर मैं समझ रहा हूँ कि एक दिन ये बालक सभी ब्राह्मणों के राजा के रूप में पूरे विश्व में भक्ति का सागर बहा देगा। और फिर नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका कुंडली फैलाया और कहा कि इनके कुंडली का जो लग्न है मैं देख रहा हूँ कि उसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि ये बालक जो है बहुत गौरव संपन्न होगा, ये राजा की तरह होगा, और इनकी शक्ति का वर्णन करना मेरे दिमाग मेरे बुद्धि को मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा शास्त्र पंडित होगा कि बृहस्पति को भी परास्त कर देगा। और बृहस्पति कौन थे, अवतार कौन सा लेके आए थे, मैंने बताया आपको, यस सार्वभौम भट्टाचार्य। तो आगे जाकर मध्य लीला में जब वो जाते हैं उड़ीसा में तो सार्वभौम भट्टाचार्य को परास्त कर देते हैं। तो इसका भविष्यवाणी यहाँ पर नीलांबर चक्रवर्ती कर रहे हैं कि इनकी शास्त्र ज्ञान इतना तेज होगा कि बृहस्पति को भी परास्त कर देंगे, और सद्गुणों का ये क्या कहते हैं उसको, ट्रेजर हाउस, हाँ भंडार हो गए सद्गुणों का। उस समय एक ब्राह्मण संत वहाँ पर आया और भगवान के गुणगान करने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि ये जो बालक है ये स्वयं नारायण है, ये शास्त्रों का सार जो है वो प्रस्तापित करेगा। ये एक दिन बहुत सुंदर प्रचारक बनेगा और पूरे विश्व का उद्धार करेगा। हर एक व्यक्ति को वो जो ब्रह्म शिव और सुखदेव गोस्वामी प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, स्वयं ब्रह्मा शिवजी और सुखदेव महाराज जी वो सार प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, वो सार वो हर एक जीव को बड़ी ही आसानी से बांट देंगे। केवल इस बालक को देखकर पूरे विश्व में आनंद छा जाएगा और साथ साथ विरक्ति और दया प्रकट हो जाएगी। केवल इसको देखने से इसके बारे में क्या कहा जाए, जो भगवान विष्णु को भी नहीं चाहते हैं, नास्तिक नास्तिक हैं, वो लोग भी इस बालक को देखकर कृष्ण भगवान के भक्त बन जाएंगे। इस बालक का गौरव अनंत ब्रह्मांडों में गाया जाएगा और ब्राह्मण से लेकर बच्चों तक सब लोग उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। स्वयं भागवत धर्म के मूर्तिमान रूप बनेंगे, एक महान संत बनेंगे और सारे देवता ब्राह्मण गुरु इनके चरणों में आकर शरण ग्रहण करेंगे। ये बालक जब जैसे विष्णु अलग अलग अवतारों में जन्म लेकर अलग अलग युगों में धर्म का प्रचार करते हैं, ये बालक उसी तरह से इस युग के युग धर्म का सब जगह प्रचार करेंगे। मुझे लगता नहीं है, ब्राह्मण जी कह रहे हैं कि इसका हॉरोस्कोप की कुंडली है, इसको पूरी तरह मैं समझ पाऊंगा। हे जगन्नाथ मिश्र, आप बड़े ही भाग्यवान हो, ऐसा दिव्य पुत्र आपने प्राप्त किया है, मैं आपको वंदन करता हूँ। आप बड़े भाग्यवान हैं और मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ कि मुझे ऐसे बालक का कुंडली पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आप जान जाओ कि आपके घर में साक्षात मूर्तिमान आनंद प्रकट हुआ है, आध्यात्मिक आनंद। बिकॉज दैट रसा वुड हैव बीन ब्रॉट अनहैप्पीनेस लॉर्ड्स पेरेंट्स, द ब्राह्मण सेड नथिंग अबाउट लॉर्ड्स एक्सेप्ट संन्यास। और इतने आनंद के क्षण में माता पिता को दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए, इसलिए आगे जाकर ये बालक संन्यास ग्रहण करेगा, ये वार्तालाप उन्होंने उस समय नहीं किया। जब आनंद का इतना वर्णन हो रहा है तो उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि इनको अभी बताया जाए कि ये संन्यास ग्रहण करके आपको दुख भी देगा। इस तरह से सुंदर वर्णन सुन के जगन्नाथ मिश्र जो है बड़े आनंद से भर गए और उन्होंने ब्राह्मण को दक्षिणा दिया। जगन्नाथ मिश्र वैसे बड़े अमीर नहीं थे, उनके पास ज़्यादा कुछ धन नहीं था, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण के चरणों को अश्रुओं से धोया और चरणों को स्पर्श करके हरि हरि नाम से उच्चारण किया। इस प्रकार से सभी उपस्थित लोगों ने हरि हरि नाम का उच्चारण किया और बालक का गौरव किया। संगीतज्ञ लोग वहाँ पर आए, उन्होंने मृदंग बजाए, शहनाई बजाई, बांसुरी बजाई और अलग अलग वाद्य बजाए। इस तरह से इस सारे लोग आनंद मशगूल थे, सब देवता लोग अलग अलग ब्राह्मणों के रूप धारण करते, मानव का रूप धारण करके वहाँ पर मिक्स हो गए सबके अंदर। और भगवान के जो बालक रूप था, सभी देवी देवताओं ने ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान का चरण स्पर्श किया और भगवान के हाथ में दुर्वा ग्रास जो है दुर्वा दर्बांकुर वो अर्पण किया और भगवान को आशीर्वाद दिया कि आप चिरंजीवी हो। टचिंग द लॉर्ड्स हेड विथ ऑस्पिशियस दुर्वा ग्रास इन हर लेफ्ट हैंड, अदिति देवी सेड कि आप अनंत काल तक जिए। अदिति देवी ने मुस्कुराकर कहा, आप अनंत काल जिए और आप मे यू मैनिफेस्ट ऑन द अर्थ फॉर लॉन्ग टाइम, पृथ्वी पर आप अनंत काल तक विराजमान रहे। सची देवी देख रही थी कि ये सारी औरतें साधारण औरतें नहीं हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है। हाँ, उनके रूप को देखते हुए समझ में आ रहे थे उनको कि यहाँ पर कोई दिव्य व्यक्ति है। सभी देवी देवताओं ने सची माता के चरणों का स्पर्श किया, तभी सची माता को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आनंद का अनुभव हो रहा था। इस प्रकार से अनंत भगवान, अनंत शेष और ना ही वेद जगन्नाथ मिश्रा के घर में उत्पन्न हुए आनंद का वर्णन कर पा रहे थे। उनके लिए भी जगन्नाथ घर मिश्रा के घर में उत्पन्न हुआ आनंद जो है वो वर्णन करना नामुमकिन था। नदिया गांव में सची माता के घर में जो आनंद प्रकट हो रहा था उसका वर्णन कोई नहीं कर पा रहा था। यहाँ स्वयं वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे भी आनंद वर्णन करना नामुमकिन है, मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्या आनंद उत्पन्न हुआ था उसका कुछ शब्दों में वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के समय अवतार हुआ, और इसलिए इस तरह से सबसे अपवित्र तिथि चंद्र ग्रहण की भी उन्होंने पवित्र कर दी। ये उनका विशेष उद्देश्य था कि जो जो भी विश्व में अपवित्र है, जो जो भी पतित है, जो भी पाप है, वो सबको नष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उतार लिया। और आते ही जन्म के समय ही सभी यवन लोग, नास्तिक लोग, ढोंगी लोग, ब्राह्मण लोग जो भगवान की भक्ति छोड़कर भ्रष्ट हो गए थे, सभी लोगों को उन्होंने भगवान हरि का नाम लेने के लिए मजबूर कर दिया। और सब जगह पर गंगा नदी के किनारे केवल भगवान हरि के नाम की गूंज सब जगह गूंज रही थी। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं। पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे आप शरण आ जाओ, फिर मैं आपको पापों से मुक्ति दिला दूंगा। सर्वधर्मम परित्याज्यम, पहले कहते हैं सब धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, तब अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तब जाकर मैं आपको पापों से मुक्ति दिला दूंगा। ऐसे नहीं कहा है तब मैं आपको शुद्ध प्रेम प्रदान करूंगा, ऐसा नहीं कहा है। पापों से मुक्ति दिला दूंगा मतलब आपकी जो अकाउंट है वो साफ कर दूंगा, पाप पुण्य का अकाउंट। लेकिन पात्रे अपात्रे ना देखिला, चैतन्य महाप्रभु का और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है कि बिना किसी योग्य व्यक्ति को देखते हुए, व्यक्ति योग्य है कि अयोग्य है, जिस जगह पर वो खड़ा है वो स्थान योग्य है कि अयोग्य है, इसका विचार न करते हुए सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने, पापियों को, ढोंगी ब्राह्मणों को, कर्मकांडियों को, ज्ञानियों को, योगियों को, जो जो उनके संपर्क में आए, सबको उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया। न केवल पापों से मुक्ति दिला दी, न केवल भगवान को भगवान के प्रति आकर्षण दिया, लेकिन सबको तत्क्षण भगवान का दिव्य प्रेम प्रदान करते हुए आनंद के सागर में उनको डुबो दिया उन्होंने। जन्म जन्मांतर तक योगियों को, तपस्वियों को, ज्ञानियों को, योगियों को योग ज्ञान मार्ग को अपनाना पड़ता है, तब भी जाकर भगवान के चरणों से निकलने वाले एक किरण को वो पकड़ नहीं सकते हैं। भगवान के चरणों से अनंत किरण निकलते हैं, तेज के किरण निकलते हैं, लेकिन उनमें से एक किरण का दर्शन भी वो नहीं कर सकते हैं। अनंत हजारों जन्मों तक भगवान का भजन करके, ज्ञान प्राप्त करके, या तपस्या करके, या योग क्रिया करके, या कर्मकांड करके, यज्ञ तप करके नहीं कर सकते। उन सारे व्यक्तियों को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन मात्र से ही न केवल पापों से मुक्त कर दिया, न केवल कर्म ज्ञान योग से मुक्त कर दिया, लेकिन सर्वोच्च प्राप्ति जो है श्री कृष्ण प्रेम, वो बड़े फ्रीली सबको बांट दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार को महावदन्याय अवतार कहते हैं, कि ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया आज तक किसी अवतार ने नहीं दिखाई। और उस समय जो लोग उपस्थित थे नवद्वीप धाम में, न केवल नवद्वीप धाम में, पूरे बंगाल देश में, न केवल बंगाल देश में, पूरे विश्व में जितने भी जीव उपस्थित थे उस समय, केवल मनुष्य के शरीर में नहीं, सभी योनियों के शरीर में जितने भी जीव उपस्थित थे, सारे जीवों का उसी जीवन के अंत में चैतन्य महाप्रभु ने परम धाम में उनका उद्धार कर दिया। और साथ साथ ये भी आशीर्वाद दिया कि जो लोग वहाँ उपस्थित थे, जितने भी जीव उपस्थित थे, वो जब मरेंगे सब भगवत धाम जाएंगे, लेकिन उसके बाद 10,000 साल तक जो भी हरि नाम को स्वीकार करेगा वो भी भगवान के धाम में चला जाए। तो साधारण आशीर्वाद नहीं है। आज हम सब लोग उनके जन्म के बाद 10,000 साल के अंदर ही हैं। हम लोग अभी केवल 525 साल हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार होकर। 1486 साल में उनका जन्म हुआ था, 1486, और उस समय 18 फरवरी को फाल्गुन पूर्णिमा आई थी। 18 फरवरी 1486 इस दिन चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। इसके आगे आप 10,000 साल जोड़ लीजिए, तब तक जो भी व्यक्ति पतित हो, शूद्र हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, अच्छा गुण वाला हो, नहीं अच्छा गुण वाला हो, अगर वो भूल से भी भगवान के नाम को पुकारता है और भगवान के नाम का सच्चा सहारा लेता है, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए इन 10,000 साल को कलयुग का स्वर्ण युग कहा गया है। और इस स्वर्ण युग के अंदर जो भी उन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए महामंत्र का आसरा लेगा, वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करके श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा और भगवत धाम में अपने आप को आश्रय प्राप्त करेगा। इसलिए हम सबका ये केवल भाग्य नहीं, हमारा सम्मान भी है कि हम जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है उस कलयुग में हमने जन्म लिया है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार जब 1000 कलयुग होते हैं, मतलब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 मिलकर एक चक्र होता है, इसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे जब ही 999 कल्प खत्म होते हैं, मतलब 999 बार सत्ययुग आते हैं, उसके बाद 999 बार त्रेतायुग आते हैं, उसके बाद 999 बार द्वापर युग आते हैं, उसके बाद वाले कलयुग में ही चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। मतलब 1000 जब कलयुग आते हैं तो 1000वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और जब 1000 द्वापर युग होते हैं उसमें 1000वें द्वापर युग में ही कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार कृष्ण भगवान और एक बार चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं, और हम लोग उस कलयुग में जन्मे हुए हैं जिसके पहले द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए हैं और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं और पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम के सागर में उन्होंने डुबो दिया है। उसी कलयुग के अंतर्गत केवल 525 साल हम सब लोग यहाँ पर जन्म लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा परम भाग्य है। कभी कभी लोग समझते नहीं है हमारा भाग्य क्या है। इस समय पर अगर हम भगवान के नामों का आश्रय ग्रहण करते हैं, हाँ कुछ लोग सोचते होंगे कि हम तो अलग धर्मों के हैं, लेकिन अपने अपने धर्मों के अंदर भी भगवान के योग्य नामों का, परम भगवान जो सुप्रीम फादर, जो परम पिता है, उसके नाम को हम पुकारेंगे तो वही कृपा सबको प्राप्त होगी। क्योंकि कलयुग जो है वो कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम के आधार पर कलयुग उपस्थित है और खड़ा है, इसका पूरा अस्तित्व ही नाम पर आधारित है। तो इस नाम को जो स्वीकार करेगा किसी भी धर्म का होते हुए भी, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त करेगा। और इस समय पर अपने अपने धर्म के अनुसार जो भगवान का नाम लेगा, न केवल भगवान का आसरा पाएगा, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम वो सबसे दुर्लभ प्राप्ति है, वो बड़ी सहजता से इसी जन्म के अंदर प्राप्त करेगा। केवल 2 काम करने हैं, भगवान का नाम लेना है और किसी का अपराध नहीं करना है। अपराध करेंगे तो हम गलत रास्ते पर जाएंगे, अपराध से मुक्त होना चाहिए। भगवान के भक्तों का अपराध और किसी का भी अपराध नहीं करना चाहिए। किसी के दिल को ठेस लगे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, किसी को दिल दुखाना नहीं चाहिए, खास करके भगवान के भक्तों का। इतना अगर हम देखभाल करेंगे, केयर लेंगे, और ऐसा न करते हुए, अपराध न करते हुए भगवान के नाम को ग्रहण करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रॉमिस किया है कि आपको मैं स्वयं भगवत धाम ले जाऊँगा। ये भी प्रॉमिस किया है कि जहाँ जहाँ जाकर आप बोलेंगे वहाँ पर आपकी जीवा पर मैं आकर बोलूँगा और आपकी जीवा पर प्रेम से नृत्य करूँगा, आपकी जीवा को शक्ति दूंगा। जो जो व्यक्ति भगवान के बारे में बोलेगा उनका संग मैं दूंगा, उनके साथ में चलूँगा, उनके जीवा पर बैठकर मैं बोलूँगा और सुनने वाले के हृदय पर उसका परिणाम करूँगा, उनको भगवान के प्रति आकर्षण दूंगा। कितनी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। क्या करना है हमको, केवल हमको कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू। जैसे नदी बह रही है उसमें आप कूदेंगे तो क्या होगा, अपने आप बहते जाएंगे। केवल नाम की नदी में आपको प्रवेश करना है, बस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति आपको अपने आप हो जाएगी। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले बार भगवान के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।